नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ सुकृति वत्स की रिपोर्ट, जिसमें वो कह रही हैं कि डीडीए कालकाजी हाई राइज बिल्डिंग में पुनर्वासित झुग्गी परिवारों की एक नई शुरुआत हुई है, जिसके बाद उनके लिए हर दिन त्योहार जैसा है। मार्च की तपती दोपहर है। 40 साल की सुशीला देवी अपनी सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में दोस्तों के साथ बैठ इत्मीनान से गप्पे लड़ा रही हैं। उन्हें अपने बेटे के स्कूल से लौटने का इंतजार है। हल्के नारंगी रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहने हुए सुशीला के चेहरे पर मौजूद खुशी को देखकर सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने नए घर से कितनी खुश हैं। उसका ये नया घर दिल्ली के कालकाजी के एक गगनचुंबी इमारत में है। वो अभी एक महीने पहले ही पास की स्लम कॉलोनी भूमिहीन कैंप से यहाँ के एक बीएचके फ्लैट में शिफ्ट हुई हैं। सुशीला कुल 1862 लाभार्थियों में से एक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की हाई राइज इमारतों में शिफ्ट किया गया है। एक महीने पहले भूमिहीन कैंप में उसके घर को सील कर दिया गया था और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS परिवारों के लिए बने 25 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले उनके नए फ्लैट में भेज दिया गया। सुशीला ने दिप्रिंट को बताया कि इन दिनों मानो समय उड़ सा रहा है, हर दिन एक त्यौहार जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आकर फिर से अपना जीवन शुरू करने पर फख्र है। घर में कदम रखने से पहले हमने पूजा की थी और उसमें अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया था। मैं भूमिहीन कैंप में कभी ऐसा नहीं कर पाई थी। मैं अब बेहद खुश और संतुष्ट हूँ। 1862 आवंटियों में से ज्यादातर परिवार अपने नए घरों में चले आए हैं। अधिकांश फ्लैटों में बालकनियों में सूख रहे कपड़ों को देखकर इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है उनके लिए ये एक नए जीवन की तरह है। वे कहते हैं कि ये बदलाव उनकी बेहतरी के लिए है। सुशीला के लिए ये नया घर और कॉम्प्लेक्स काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि अब उस झुग्गी बस्ती में होने वाले रोजाना झगड़ों से छुटकारा मिल गया है। वो अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ यहाँ रहते हुए काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल काफ़ी साफ सुथरा है। टॉयलेट होने से काफ़ी मुश्किलें कम हो गई हैं। भूमिहीन कैंप में तो हमें सार्वजनिक आम शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। रात में काफ़ी दिक्कतें आती थीं। उस समय वो जगह बहुत सुरक्षित नहीं होती थी। परियोजना के उद्घाटन के बाद से भवन में तैनात DDA के एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि भूमिहीन कैंप से लोगों को पोजीशन लेटर सौंपने और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारी ने कहा कि इस योजना के लिए पहचाने गए कुल 1862 लाभार्थियों में से 1100 लोग पहले ही यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। वो लगभग 12 अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने कालकाजी परिसर में अपना ऑफिस बना लिया है। उनके काम में अब सोसाइटी के मसलों को हल करना और नए मकान मालिकों की शिकायतें सुनना शामिल है। DDA के इन अधिकारियों के अनुसार लगभग 400 से 500 लोगों ने उन झुग्गियों में अपने घरों को पूरी तरह से खाली कर दिया है या उन्हें अब सील कर दिया गया है। DDA हाउसिंग कमिश्नर VS यादव के मुताबिक 5 साल में अगली बड़ी चुनौती लाभार्थियों को अपने इलाके के रखरखाव के लिए लगभग 500 रुपये मासिक रखरखाव शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना है। इसके जरिए सोसाइटी की सफाई, कचरा संग्रह और लिफ्टों का रखरखाव आदि किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरअसल वे इस तरह के जीवन के आदी नहीं हैं, इसलिए यह थोड़ा मुश्किल होगा। यादव ने दिप्रिंट को बताया कि ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन EWS फ्लैट्स का कैसे रखरखाव किया जाता है, क्योंकि अगले 5 सालों के लिए मेंटेनेंस चार्ज 30,000 रुपये है, जो कि पहले ही घरों के भुगतान के साथ ले लिया गया है। लाभार्थियों को हर फ्लैट के लिए 1,24,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा है, बाकी की लागत DDA ने वहन की है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि हर कोई रखरखाव का भुगतान करने के लिए तैयार होगा भी या नहीं। कुछ लोग शिकायत भी कर सकते हैं, इसलिए यह मॉडल ऐसी परियोजनाओं की सफलता को समझने के लिए एक प्रयोग के रूप में काम करेगा। यादव ने कहा कि रहने वाले लोगों में विश्वास जताते हुए शुरुआती अनिच्छा के बावजूद वे इसके लिए तैयार हो सकते हैं, जब वे देखेंगे कि यह बदलाव उन्हें और अगली पीढ़ी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा है। सुशीला की सहेली बिमलेश भी एक महीने पहले कालकाजी एक्सटेंशन DDA फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। उन्होंने दिप्रिंट से बात की और बताया कि परिसर के भीतर सभी के साथ रंगों से खेलने, नाचने, गाने और होली मनाने में कितना मज़ा आया था। बिमलेश ने कहा कि होली के दौरान शरीफ यानी इज्जतदार परिवारों के लोग कभी बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि आमतौर पर मलिन बस्तियों में पुरुष हंगामा करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। साथ ही खुले नाले से आने वाली बदबू की समस्या भी दूर हो गई है, इससे हमारा जीवन बेहतर हो गया है। एक सरसरी नज़र डालने पर यह इमारत और सोसाइटी काफ़ी साफ सुथरी नज़र आती है। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक MCD की एक वैन रोज़ाना कूड़ा उठाने आती है। सोसाइटी में बिजली की सुविधा है और रात में सुरक्षा के लिहाज से हर समय स्ट्रीट लाइट्स जलती रहती हैं। हालांकि दिप्रिंट से बात करने वाले कई लोगों ने पीने के पानी की कमी के बारे में शिकायत की। यहाँ तक कि पानी की बोतलें बेचने वाले एक शख्स ने सोसाइटी में अपनी एक दुकान भी खोल ली है। राजकुमार लोहिया एक दिहाड़ी मजदूर हैं और घरों को पेंट करने का काम करते हैं। वो यहाँ आकर काफी खुश हैं, लेकिन मानते हैं कि पानी की सप्लाई अभी भी एक समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ का पानी नहाने, बर्तन और कपड़े धोने के लिए तो ठीक है, लेकिन पीने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। राजकुमार ने कहा कि हम में से ज़्यादातर लोग पैकेज्ड पानी की बोतलें खरीदने के लिए हर महीने कम से कम 900 रुपये खर्च कर रहे हैं। हालांकि खारा पानी काफ़ी है, जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार सभी के शिफ्ट हो जाने के बाद साफ़ पीने के पानी की सप्लाई भी होने लगेगी। पहले ही बताए गए DDA अधिकारी ने कहा कि साइट पर अपशिष्ट जल के उपचार के लिए पहले से ही एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि सप्लाई किया गया पानी पीने योग्य है, गंदा या बीमार करने वाला नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग अगर बाहर से पानी खरीद रहे हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, अगर वे चाहें तो अपने खर्च पर एक फिल्ट्रेशन सिस्टम भी लगवा सकते हैं। जब भूमिहीन कैंप में पहली बार 2021 में सर्वेक्षण करवाया गया था तो लगभग 2891 परिवारों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया था, जिससे काफी लोगों की उम्मीदें जगी थीं। हालांकि इसके तुरंत बाद 1029 परिवारों को पुनर्वास के लिए अपात्र पाए जाने के बाद लाभार्थियों की संख्या कम हो गई, क्योंकि उनके पास दस्तावेजों की कमी थी। ऐसे कई मामले सामने आए जहां माता पिता और उनके विवाहित बच्चे भूमिहीन कैंप के भीतर अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग मंजिलों पर या घरों को एक साथ जोड़कर एक ही मंजिल पर रहते हैं, लेकिन उनके पहचान पत्रों पर एक ही पता था। कुछ परिवारों के पास सभी सदस्यों के लिए एक ही राशन कार्ड भी था। ऐसे मामलों में उन्हें अलग घरों के योग्य नहीं माना गया। बिमलेश और उनके परिवार का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उनके बेटे, उनकी पत्नी और 3 बच्चों को सर्वे के दौरान एक अलग घर के रूप में गिना गया था, लेकिन बाद में उनसे कहा गया कि अगर उन्हें अलग अलग फ्लैट चाहिए तो इसके लिए उन्हें अलग अलग पता देना होगा। बिमलेश के पति की मौत उनके फ्लैट आवंटित होने के कुछ समय बाद ही हो गई थी। उन्होंने डिफरेंट को बताया कि उन्हें तो एक फ्लैट मिल गया है, लेकिन उनके बेटे के परिवार को घर नहीं मिल पाया है। एक अलग पते को साबित करने के लिए उनके दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि 6 लोगों के परिवार को अब 1 BHK में गुजारा करना पड़ रहा है। इसी तरह की समस्या का सामना बिट्टू सिंह और गौरी देवी भी कर रहे हैं। 2 विवाहित बेटों के साथ उनका 7 लोगों का परिवार है। एक बेटा और बहू उनके साथ भूमिहीन कैंप में रहते थे, जबकि उनका दूसरा बेटा, उसका एक बच्चा और गर्भवती पत्नी साथ के जुड़े घर में रहता था। हालांकि उनके घर का एक अलग सीरियल नंबर था, लेकिन राशन कार्ड बेटों की शादी से पहले बना था, जिस वजह से पूरे परिवार का एक ही कार्ड था। बिट्टू ने कहा कि मैं जानता हूं कि सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन हम सभी से 1 BHK फ्लैट में रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कालका जी को भूल जाइए, मेरे दोनों बेटे पूरी दिल्ली में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी सस्ते फ्लैट नहीं खरीद सकते। कोई भी जगह 12 लाख रुपए से कम नहीं होगी। हम एक बेटे को पाल सकते हैं, लेकिन दूसरे को कहीं और किराए पर रहना होगा। अगर हमें 2 BHK स्पेस दिया जाता तो भी ठीक रहता। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। DDA का आधिकारिक रुख ये है कि जिन लोगों को पुनर्वास के लिए अपात्र घोषित किया गया है, वे जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीन प्राधिकरण द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। पात्र पाए जाने पर ही उन्हें घर आवंटित करने पर विचार किया जाएगा। इसकी जानकारी दावेदारों को दी जा चुकी है। DDA के अधिकारियों के मुताबिक उनके सामने ऐसे मामले आए हैं जहां कपल्स 2 फ्लैट क्लेम करने के लिए तलाक ले रहे थे, या फिर सर्वे के दौरान इस तरह के जवाब दिए गए ताकि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा फ्लैट्स मिल जाएं। आयुक्त ने कहा कि जिस भूमि पर ये झुग्गी निवासी रह रहे थे उसे पुनः प्राप्त करना होगा, ताकि ऐसी और पुनर्वास परियोजनाएं आ सकें और DDA की भूमि पर मौजूद 376 झुग्गी ग्रुप्स के अधिक से अधिक निवासियों का पुनर्वास हो सके। अगर वे अपात्र पाए गए हैं तो उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।